दिन भर 21 सितंबर शुक्रवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात रद्द की।
पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान का असली चेहरा सामने आ गया है, वो भी उनके कार्यकाल के शुरुआती दौर में। ऐसे माहौल में पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं।
भारत प्रशासित कश्मीर में अगवा किए गए 3 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या। विवेचना में चर्चा इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान की जिंदगी के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर।
इमरान ने जिस वजह से भी मेरा इंतखाब किया और मुझसे शादी करने की ख्वाहिश थी उनकी, वो गलत थी क्योंकि मैं उनके साथ बहुत मिसमैच्ड थी।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवानों के अपहरण और उनकी हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ विदेश मंत्री स्तर की बातचीत को रद्द कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस महीने के आखिर में बातचीत का प्रस्ताव रखा गया था क्योंकि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने उत्साह दिखाते हुए पत्र लिखा था, लेकिन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत अर्थहीन है। स्थानीय शेयर बाजारों में आज दोपहर को शेयरों में बिकवाली के बाद सेंसेक्स 1127.58 अंक गिरकर 35993.64 पर आ गया था, लेकिन इतनी तेजी से गिरने के बाद इसमें तेजी देखी गई और सेंसेक्स करीब 900 अंक ऊपर उठा और अंत में बीएसई सेंसेक्स 279.62 अंक गिरकर 36841.60 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 11143 अंक पर बंद हुआ। चीनी सेना द्वारा रूस से हथियार खरीदने पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने के मामले पर चीन और रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है। रूस ने अमेरिका पर खुद को वैश्विक हथियार बाजार में दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है कि उन्होंने इन प्रतिबंधों को शत्रुतापूर्ण और अप्रत्याशित बताया है। रूस द्वारा चीन को लड़ाकू विमान और मिसाइल प्रणाली बेचने को कानून का उल्लंघन बताया गया है। बीबीसी के रक्षा और राजनयिक मामलों के संवाददाता का कहना है कि चीन के मुकाबले रूस निशाना है, लेकिन इन प्रतिबंधों से चीन और रूस के बीच सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोफ ने अमेरिका के फैसले की आलोचना की है। हमने हर चीज से हैरान होना बंद कर दिया है, खासतौर पर जब सुखोई कंपनी के संबंध में इन प्रतिबंधों की घोषणा कुछ भी नहीं बल्कि अनुचित प्रतिस्पर्धा का ऐलान है, और हम सोचते हैं कि एक बार फिर यह साफ हो चुका है कि डॉलर प्रणाली खुद ब खुद अस्वीकार हो चुकी है और डॉलर में विश्वास तेजी से घट रहा है। ये थे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोफ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तंजानिया के लेक विक्टोरिया में नाव पलटने के बाद खोजी अभियान जारी है और गायब हुए लोगों के परिजन काफ़ी व्याकुल हैं। मवांजा शहर के दक्षिण में 2 द्वीपों के बीच गुरुवार को एमवी नियेरेरे नामक नाव पलट गई थी। अधिकारियों के मुताबिक 100 से अधिक लोगों की मौत हुई और तकरीबन 30 लोगों को बचाया गया है। हालांकि ऐसी रिपोर्ट है कि कम से कम 200 लोग नाव पर सवार थे और ऐसा माना जा रहा है कि नाव में संख्या से अधिक लोग सवार थे। दुर्घटना में गायब अपने भतीजे को तलाश रहे एक शख्स ने कहा,
taarifa nimezipata kupitia kwa kijana yake ambaye yuko kule kisiwani kule।
मेरा भतीजा द्वीप पर था, उसने मुझे बताया था कि उसके पिता और भाई नाव पर थे। उसने आखिरी बार तब बात की थी जब मेरे भाई बुगोरोरो छोड़ रहे थे। उन्होंने उनसे कहा था कि वो घर आने के लिए जल्द नाव लेगा। दुर्घटना के बाद उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई बात नहीं हो पाई। ये थे अपने भतीजे को तलाशते एक व्यक्ति के शब्द। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती यौन हिंसा के मद्देनज़र भारत सरकार ने नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर की शुरुआत की है। इसके डाटाबेस में उन 4,00,000 लोगों के नाम, पते और उंगलियों के निशान होंगे जो पिछले 13 साल में बलात्कार या दूसरे यौन अपराधों में दोषी रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ कानूनी एजेंसियां ही इस जानकारी को पा सकेंगी। भारतीय मीडिया में अक्सर यौन हिंसा की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आती हैं, साथ ही महिलाओं द्वारा कड़े कानूनों को लेकर कई बार प्रदर्शन भी किए गए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री पावलो क्लीमकिन ने हंगरी पर यूक्रेन की जमीन पर हंगरी का पासपोर्ट जारी करने को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बताया है। यूक्रेन टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में क्लीमकिन ने कहा कि संयोजित दांवपेच एक चुनौती है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से शाम की सभा दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ होने वाली मुलाकात भारत ने आज रद्द कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि मौजूदा माहौल में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं।
कल हमने घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। उसके बाद दो गंभीर घटनाएं हुई। हमारे सुरक्षा कर्मियों की पाकिस्तान में बसे एंटिटीज ने बर्बरतापूर्वक हत्या की और पाकिस्तान ने आतंकवाद और आतंकवादी के सम्मान में उनको ग्लोरीफाई करने के लिए 20 डाक टिकट जारी किए। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। विदेश मंत्री स्तर पर पाकिस्तान से मुलाकात का निर्णय हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री के खतों में जो भावना थी उसके तहत लिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में यह कहा था कि वो पॉजिटिव चेंज के पक्ष में है, वो शांति के पक्ष में है। उन्होंने आतंकवाद पर भी चर्चे की बात की थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान के नए शुरुआत के पीछे, उनके वार्ता के प्रस्ताव के पीछे उनके नापाक इरादे हैं, जिसका खुलासा हो चुका है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान का असली चेहरा सामने आ गया है, वो भी उनके कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही। ऐसे माहौल में पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल अर्थहीन है। इस बदले हुए परिस्थिति में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच न्यूयॉर्क में कोई मुलाकात नहीं होगी।
ये थे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार। पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है सुनवाएंगे आपको, लेकिन पहले सवाल ये कि क्या भारत के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था? क्या भारत किसी और तरह से पाकिस्तान को अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था? पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजनयिक विवेक काटजू के सामने मैंने यही सवाल रखे।
नीजर्क रिएक्शन तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि 24 घंटे में भारत सरकार का एनालिसिस यही रहा है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि इसमें सकारात्मक बातचीत नहीं हो पाएगी।
काटजू साहब, आपको लगता है कि क्या भारत के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं हो सकता था?
विकल्प दो हो सकते हैं, एक की बातचीत रद्द कर दी, दूसरा की बातचीत हो और बातचीत में फिर बहुत ही कड़ा रुख अपनाया जाए। अब ये देखना पड़ता है कि इसमें से बेहतर रुख क्या है और आज का माहौल क्या है। राजनेता जब निर्णय लेते हैं तो माहौल भी तो देखते हैं, परिस्थितियां देखते हैं, माहौल देखते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं।
जिस माहौल का आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं वो देश में जो आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं, वो जम्मू कश्मीर की जो घटनाएं हैं, वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं आप?
नहीं, मैं ये इशारा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो शांति की बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो आतंकवादी हैं उनके लिए डाक टिकट जारी किए जा रहे हैं। वहाँ से सीमा पार आतंकवाद चल रहा है, सीमा पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, शर्मनाक हिंसात्मक घटनाएं हमारे सैनिकों के खिलाफ, तो वो माहौल को बनाता है।
क्या काटजू साहब, ये बेहतर विकल्प नहीं होता कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलते, भारत की विदेश मंत्री अपना कड़ा रुख उनको जताती, ये ज्यादा बेहतर विकल्प नहीं हो सकता था?
वो एक विकल्प जरूर हो सकता था, लेकिन इसमें ये देखना पड़ता है कि उसके बाद उसका अंजाम क्या हो। कभी कभी मीटिंग में कड़ा रुख अपनाया जाए, बातचीत हो, कड़े अल्फाजों का इस्तेमाल हो, तो उससे स्थिति या बेहतर होगी या वो स्थिति बेहतर होगी कि जब मीटिंग ही नहीं। इस पर सरकार को सुनना पड़ता है और पहले उन्होंने कहा कि बातचीत करेंगे, लेकिन फिर शायद पुनर्विचार करके इस नतीजे पहुंचे कि इस वक्त बेहतर है कि बातचीत नहीं है।
24 घंटे पहले जब भारत ने घोषणा की थी कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात होगी, किसी को नहीं पता था कि अगले 24 घंटे में इस तरह का डिसीजन हो जाएगा और बात पलट जाएगी। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ और संभावनाएं निकल आए मुलाकात की, बातचीत की इस तरह की?
मुझे तो अब नहीं लगता है कि ऐसी संभावना उत्पन्न होगी, क्योंकि निर्णय हुआ, फिर निर्णय बदला गया, अब तीसरा निर्णय इस वक्त तो मुझे मुश्किल ही दिखता है।
ये थे पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजनयिक विवेक काटजू। भारत के इस फैसले पर पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, यही जानने के लिए मैंने बात की इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू सेवा के वरिष्ठ सहयोगी हारून रशीद से।
देखें, अभी तक फॉरेन ऑफिस की तरफ से या सरकार के किसी और अधिकारी की तरफ से कोई रिटन स्टेटमेंट तो सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने एक टीवी से बात की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि शायद इसका कारण जो है वो इंडिया में जो इलेक्शन ईयर शुरू हो चुका है और लगता है कि बीजेपी की सरकार जो है वो इलेक्शन ईयर में तरह के पाकिस्तान के साथ अपना रवैया जो है वो नरम करता दिखाने नहीं चाहती, और शायद कश्मीर और पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात की ऑफर की थी उसको इस वक्त शायद आगे ले जाना अब उसके लिए मुश्किल हो गया है, और शायद जो इनिशियल रिएक्शन था उसके बाद अब शायद वो अपने बयान पर वापस चले गए हैं। लेकिन काफी हैरत का इजहार किया जा रहा है यहाँ पर अवामी हलकों में भी कि 24 घंटे के अंदर अंदर कैसे इंडियन सरकार ने पहले हाँ की और फिर ना कर दी, लेकिन हैरत जरूर उस पर जाहिर की जा रही है।
अरुण साहब, क्या उम्मीद करें कि पाकिस्तान से छपने वाले कल के अखबारों में किस तरह की सुर्खियां नजर आ सकती हैं?
देखें, काफी नेशनलिस्टिक तो होंगी पाकिस्तान के मौकिफ के एंगल से होंगी, और शायद इस तरह की हों कि इंडिया उर्दू के अखबारों में तो कम अज कम इस हद तक होगी कि इंडिया फिर मुजाकरात से भाग गया, लेकिन इंग्लिश के जो अखबार हैं उसमें शायद कुछ जरा सा बेहतर अंदाज में इसको ज्यादा न्यूट्रल अंदाज में पेश किया जाए, लेकिन होंगी ओवरऑल जो इम्प्रेशन होगा वो यही होगा कि इंडिया ने इस दफा बैकफुट पे चला गया है एक मरतबा फिर, और पाकिस्तान जो चाह रहा है इतने अरसे से कि मुजाकरात दोबारा शुरू हों और इस खत्ते में अमन आए, वो कोशिश जो है एक मरतबा फिर उसमें तातुल आ गया है।
ये थे इस्लामाबाद से बीबीसी उर्दू सेवा के वरिष्ठ सहयोगी हारून रशीद। और अब खबर उस खबर का जिक्र जिसे भारत के आज के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत प्रशासित कश्मीर के शोपियां से अगवा किए गए 3 पुलिसकर्मियों की चरमपंथियों ने शुक्रवार तड़के गोली मारकर हत्या कर दी। इस खबर पर और जानकारी के साथ श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
शोपियान के कापरन और बडगुन नामी बस्तियों के रहने वाले 3 पुलिस कर्मचारियों और एक नागरिक जिसका रिश्तेदार पुलिस में भर्ती हुआ है को आज सवेरे घरों से अगवा किया गया और चंदगंटू बाद ही इनमें से 3 की लाशें निकटतम बस्ती में पाई गईं। पुलिस कर्मचारी के रिश्तेदार को रिहा किया गया था। किसी भी चरमपंथी गुट ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, परंतु ये घटना चरमपंथियों की तरफ से इस वार्निंग के बाद घटी है जिसमें पुलिस कर्मचारियों से कहा गया था कि वो सेना या पुलिस के लिए मुखबिरी करने या सैन्य ऑपरेशनों का हिस्सा बनने से दूर रहें। शोपियान के जिला पुलिस लाइंस में उच्च पुलिस अधिकारियों ने एक समारोह के दौरान मारे गए पुलिस कर्मियों के शवों पर फूल चढ़ाए। इस अवसर पर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल स्वयं प्रकाश पानी ने बताया कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि इन हत्याओं में किसका हाथ है।
हम ये अश्योर करते हैं कि कानून के दायरे में जो भी होता है दैट एक्शन वी विल टेक। सो एट दिस स्टेज वी कैन ओनली टेल यू द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन एंड वी शैल ब्रिंग द अक्यूज्ड टू द जस्टिस।
मारे गए पुलिस कर्मचारियों में से एक निसार अहमद हैं जिनके माता पिता अंधे हैं और 2 छोटे बच्चे हैं। इनके एक रिश्तेदार बशीर अहमद ने बताया,
उनका एक अंधा बाप और अंधी माँ है और 2 बच्चे हैं इसका निसार अहमद, एक घर वाले को छोड़ के चले गए। तो ये तो है ही, हम सबको यही अपील कर रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए।
पुलिस के अनुसार विभिन्न हमलों और अपहरण के बाद हत्या की ऐसी ही घटनाओं में इस वर्ष 35 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी मारे गए हैं। पुलिस और चरमपंथियों के बीच जारी इस तनाव के बाद दर्जनों पुलिसकर्मियों ने सोशल मीडिया पर पुलिस की नौकरी छोड़ने की घोषणा कर दी है, परंतु पुलिस का कहना है कि स्थानीय पुलिस किसी संकट का शिकार नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने कर्मचारियों और अफसरों को निर्देश दिया है कि वो छुट्टी लेकर घर जाने से परहेज करें। इस बीच शिया समुदाय के वार्षिक अवसर आशूरा पर एक बार फिर प्रशासन ने शिया आजादारी के जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया और इनके जुलूसों को रोकने के लिए श्रीनगर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या आरएसएस अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है? मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस भारत के संविधान और धर्म निरपेक्षता को मानता है और कांग्रेस मुक्त भारत का समर्थन नहीं करता। आरएसएस को ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी? यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 22 सितंबर को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1802 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की दूसरी पत्नी रेहाम खान की विवादास्पद आत्मकथा हाल ही में प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने उन कारणों पर रोशनी डाली है जिनकी वजह से इमरान खान के साथ उनके वैवाहिक संबंध समाप्त हुए। इमरान और रेहाम ने साल 2014 में विवाह किया था, लेकिन ये शादी सिर्फ 8 महीने ही चल पाई। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर दौड़ा रहे हैं रेहान खान की जिंदगी के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर।
एक अंग्रेज नाटककार विलियम कॉन्ग्रीव ने 1697 में लिखे अपने एक नाटक द मॉर्निंग ब्राइड में लिखा था, हेवन हैज नो रेज लाइक लव टू हेट्रेड टर्न नॉर हेल ए फ्यूरी लाइक ए वोमन इज गॉन। लबोलबाब ये कि एक तिरस्कृत औरत का गुस्सा जहन्नुम की सभी विभीषिकाओं से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कॉन्ग्रीव की ये पंक्तियां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की दूसरी तलाकशुदा पत्नी रेहाम खान पर पूरी तरह से लागू होती है, जिनकी हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा पर भारत और पाकिस्तान हर जगह चर्चा हो रही है। रेहाम खां की कहानी शुरू होती है लीबिया में, जहां 1973 में उनका जन्म एक पाकिस्तानी ईएनटी सर्जन नैयर रमजान के घर हुआ था। अपने पिता के बारे में रेहाम की सबसे मधुर याद ये है कि वो उनकी माँ को हमेशा डार्लिंग कहकर पुकारते थे। मैंने ब्रिटेन फोन कर रेहाम खां से संपर्क किया।
हम तो वालदैन को समझते नहीं कि वो कभी एक इंसान भी हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं। हमारे लिए तो वो मम्मी डैडी ही होते हैं। बहुत पढ़ाकू और बहुत हार्ड वर्किंग ईएनटी सर्जन थे, तो हम काफी साल से जिंदगी में समझ ही नहीं पाए कि ये कह क्या रहे हैं, पर वो ऐसे मैटर ऑफ फैक्टली कहते थे डार्लिंग के हमें। अच्छा, ये बात मैंने इसलिए लिखी क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी में मैंने नोटिस किया है, शायद इंडिया में भी ऐसा हो, कि औरों की बीवियों से तो लोग बड़े खिलखिला के बात करते हैं, लेकिन अपनी बीवी से इतनी अच्छी तरह से बात नहीं करते। तो वालिद मेरे हालांकि बहुत सीरियस थे, लेकिन हमेशा उन्होंने बचपन से लेके आखिर तक हमने नोटिस किया कि वो डार्लिंग कहते थे।
सिर्फ 19 साल की उम्र में उनसे 16 साल बड़े उनकी बुआ के बेटे एजाज रहमान ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उनके माता पिता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन पहले दिन से ही ये शादी चली नहीं और रेहाम को अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। रेहाम बताती हैं कि ऐसा नहीं था कि उनके पहले पति उन्हें एक आदर्श और निपुण पत्नी बनाना चाहते थे, बल्कि उनकी मंशा थी उन्हें हमेशा अपने काबू में रखना।
सिर्फ घरेलू तशद्दुद ये नहीं होता कि कोई आपके ऊपर हाथ उठाए या आपको कोई चीज उठा के मारे। घरेलू तशद्दुद शुरू ही इस तरह होता है, कंट्रोल सिचुएशन से। जो भी तशद्दुद करने वाला होता है वो परख लेता है कि मैं कहाँ तक, किस हद तक जा सकता हूँ। और जो भी कम उम्र की लड़कियां होती हैं उन पे तशद्दुद ज्यादा होता है। पहले घंटे में ही समझ गई थी कि कुछ सही नहीं है, कुछ बहुत गलत हो गया है यहाँ पे। डोमेस्टिक वायलेंस सिचुएशन में कंट्रोल बढ़ता जाता है, फाइनेंशियल कंट्रोल बढ़ता है, मारपीट शुरू हो जाती है, गाली गलूच बहुत ज्यादा होता है। आपको ऐसे दिमाग में बनाया जाता है कि आप समझते हैं कि हाँ मेरी ही गलती है और अगला बंदा आपको इनकॉम्पिटेंट या बेकार या बदसूरत इस किस्म की बातें करता है कि आपको अपनी सेल्फ एस्टीम है वो खत्म हो जाती है।
13 साल के कड़वे वैवाहिक जीवन और 3 बच्चे पैदा होने के बाद रेहाम ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। तलाक लेने के बाद उनके शुरुआती दिन आर्थिक तौर पर मुश्किल थे, लेकिन उन्हें मानसिक शांति थी। उन्होंने पहले लीगल टीवी में नौकरी शुरू की और फिर बीबीसी टेलीविजन में।
जब मैंने फाइल किया डिवोर्स के लिए तो उस वक्त कोर्ट केसेस भी मैं हैंडल कर रही थी, बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल पैसे नहीं थे, कोई संभालने वाला नहीं था। और मैंने लिखा है किताब में कि मेरे पास सिर्फ 300 पाकिस्तानी रुपए थे और जो ज्वाइंट अकाउंट जो एक घर का अकाउंट था वो भी जो शौहर से तलाक ली उन्होंने फौरन वो बंद कर दिया। तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी एकदम से थी, लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये था स्टेप लेना कि मैं ये कैसे करूंगी, लोग क्या कहेंगे। जब ले लिया स्टेप्स तो उसके बाद जिंदगी बहुत आसान हो गई। और हाँ, मुशक्कत करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, लेकिन घर का माहौल बहुत ही इंतहाई खुशगवार और बच्चे भी एकदम से खिली खिली, उनकी मुस्कुराहटें, आवाज उनकी सुनने को आई घर में।
फिर अचानक उन्होंने ब्रिटेन में बीबीसी की नौकरी छोड़ दी और वो पाकिस्तान चली आई। यहाँ वो एक हाई प्रोफाइल टीवी एंकर बन गई। इस बीच उन्हें इमरान खान से 2 बार इंटरव्यू लेने का मौका मिला।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
बहुत देर की मेहरबान आते आते आपने तकरीबन 1.5 साल के बाद हमें इंटरव्यू दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि
आपके,
क्या
आपके पूछने में मेरे ख्याल में आपने सही तरह पूछा नहीं होगा।
अच्छा चले ठीक है, शायद हमारी कोताही हो, हमसे कोई गफलत हो गई हो, लेकिन अगर इतनी ही रफ्तार रही तब्दीली आने की, क्या हम ये तवक्कु कर सकते हैं कि ये तब्दीली जो प्रॉमिस की गई है वो भी यूं ही खरामा खरामा आएगी?
रेहान, तब्दीली तो आ चुकी है पाकिस्तान में। तब्दीली इस तरह आ चुकी है कि पाकिस्तान की अवाम ने 2013 के इलेक्शन के बाद सड़कों पर निकलाई, ये कभी भी नहीं हुआ। 8 बजे सुबह लाइनें लगी हुई शहरों के अंदर। मैं सारी जिंदगी मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ, इलेक्शन के दिन शहरों में छुट्टी होती थी, कोई नजर नहीं, सारे यहाँ इस्लामाबाद तो सारा नथिया के लिए चला जाता था। तो तब्दीली तो जो यूथ की इन्वॉल्वमेंट, जो बूढ़े, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह आए हैं, ये कभी पाकिस्तान में ऐसे सीन्स नहीं हुए।
इसके कुछ दिनों बाद इमरान ने रेहाम को संदेश भेजा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। कुछ दिन टालने के बाद रेहाम उनसे मिलने उनके घर गई, जहाँ इमरान ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया।
अगेंस्ट माई बेटर जजमेंट आई से कि मैं चली गई उस मुलाकात में। मैं बड़ा एक डिफरेंट उनका चेहरा देखने को मिला और मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उनका जो पब्लिक पर्सोना रहा है हम बचपन से देखते आए, वो बहुत एक एरोगेंट और सख्त मिजाज और ऑलमोस्ट रूड कहे। तो वो उस दिन जब उनसे मुलाकात हुई तो वो बहुत ज्यादा एडवाइस लेने के मूड में और बड़ी उन्होंने बड़ी फॉर्मली और बड़ी अनरोमांटिक और ऑफिशियल तरीके से उन्होंने बातों बातों में इस तरह कहा कि वैसे बाय द वे मैं मकसद मेरा यह है कि मैंने शादी करनी है और मैं बड़े अरसे से खातून की तलाश में हूँ जो कि साफ सुथरी हो और जिसकी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हो और वो मैंने तुम में क्वालिटी देखी है क्योंकि तुम बहुत खुद मुख्तार हो और तुम बहुत ज्यादा खुददार हो, लगता है कि तुम बहुत सही चॉइस होगी, लेकिन मैंने अपने पीर से पूछना है। तो मैं अब ये बातें सुन रही हूँ और मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ कि किस किस्म का इंसान है, ये कैसी बातें कर रहा है, ऐसे थोड़ी कोई रिश्ता देता है। तो मैंने जैसे जैसे मुझे लगा वहाँ वैसे ही मैंने उनको जवाब दे दिया कि ये तो जरा काफी पागलपन वाली बात है, आप होश में हैं, कैसी बातें कर रहे हैं।
उसी दौरान एक दिलचस्प घटना घटी। इमरान के लॉन में सैकड़ों की तादाद में मच्छरों ने रेहाम पर हमला कर दिया। अचानक इमरान झुके और उन्होंने अपने हाथों से रेहाम की पिंडलियों को ढक लिया, मानो वो उन्हें मच्छर काटने से बचा रहे हों।
एक्चुअली मेरा खून मीठा है, लेकिन हम चूंकि बाहर बैठे हुए थे, लॉन में बैठे हुए थे, वहाँ कुछ बहुत ही दहशतगर्द किस्म के मच्छर होते हैं, बहुत ही बड़े साइज के, और इतने मोटे मोटे मच्छर मुझे अटैक कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं अकेली यहाँ पे बैठी हूँ, मैं क्या करूँ। तो सडनली आए और वो अच्छा, मुझे इसलिए वो मैंने इंसिडेंट लिखा क्योंकि लोग अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि अगर इतने ही बदतमीज थे और इतने ही रूड थे तो आपने शादी क्यों कर ली, क्योंकि जो उन्होंने मुझे अपना एक रूप दिखाया वो बहुत मुख्तलिफ था, वो इंतहाई जेंटल और इंतहाई केयरिंग और बहुत ही ज्यादा जिसको आप लविंग और इवन रोमांटिक कहें। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये इतना जो आकड़ में इंसान रहता है वो आके मेरे पाँव पकड़ लेगा लिटरली।
रेहाम ने इमरान की शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर उनमें मतभेद हुए, लेकिन फिर 31 अक्टूबर 2014 को दोनों का निकाह हो गया। मैंने रेहाम से पूछा कि इमरान की एक प्ले बॉय की इमेज रही है, क्या शादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा?
ये भी एक मिथ हमें बड़े बूढ़ों ने और जो आंटियां होती हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है कि वो जो शादी से पहले प्ले बॉय होता है वो शादी के बाद ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल बात गलत है और ये मैं आपको अपने माहिराना और तजुर्बे से बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होता। एक आदत होती है, एक ये एक हैबिचुअल पैटर्न है, तो वो शायद अपने को सुधारना भी चाहते हो, अपने में बदलाव लाना चाहते हो, लेकिन जो इतने अरसे एक लाइन है किताब में इमरान ही की कही हुई कि बेबी यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, ये बार बार मुझे कहते थे जब भी मैं उनको कहूँ किसी बात पे कि ये आपने कैसे कर दिया, तो वो मुझे आगे से इस तरह से हंसी मजाक में मुझको समझा दें कि मैं नहीं सुधरने वाला।
लेकिन पहले दिन से ही इमरान और रेहाम के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। रेहाम का कहना है कि कुछ बाहरी लोगों और उनकी पूर्व पत्नी जेमाइमा गोल्डस्मिथ का असर उन पर अब तक बरकरार था। मैंने रेहाम से पूछा कि क्या इमरान अपनी पूर्व पत्नी और दूसरी महिला मित्रों का जिक्र कभी आपके सामने करते थे?
बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। लोगों के भी बड़े किस्से उन्होंने मुझे सुनाए। खवातीन पसंद नहीं करती कि आप अपने पास्ट के बारे में बताएं, लेकिन इमरान एक्स वाइफ हो या एक्स गर्लफ्रेंड हो या जो भी किस्से, वो रुकते ही नहीं। और अब जब किताब लोगों ने पढ़ी है तो मुझे कुछ खवातीन ने कॉन्टेक्ट किया है जो उनकी जिंदगी का हिस्सा रही है और उन्होंने मुझे कहा कि जब हमने तुम्हारी किताब पढ़ी रेहाम तो वो अल्फाज जो हमने उनकी इमरान की जबानी सुने थे तुमने वो अल्फाज लिखे हैं और हम पे भी
इमरान का रहन सहन और निजी जीवन की कुछ चीजें रेहाम को रास नहीं आईं। इमरान के कैंप से भी उनके खिलाफ एक सस्टेन मुहिम शुरू कर दी गई।
मैं समझ ही नहीं सकी कि वो दिल में मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी थ्रू आउट एक साल जो हमने साथ गुजारा उसमें मेरी हमेशा वो तारीफ करें, यानी अगर मैं कहीं तकरीर दे के आई हूँ या कहीं इंटरव्यू दे के आई हूँ तो उन्होंने मुझको बहुत ज्यादा लाविश प्रेज, इतना कि इंसान एम्बैरस हो जाए कि तुमने क्या जबरदस्त तुमने जवाब दिए उसको, और क्या तुमने उसको, जब मैंने अल्ताफ हुसैन के बारे में बात की तो कराची से उन्होंने मुझे फोन किया कि तुमने तो आग लगा दी है, जबरदस्त, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू. लेकिन मेरे पीठ पीछे ऑफ कोर्स कि क्या एक साजिश क्रिएट की जा रही थी और इमरान उसका हिस्सा था. लेकिन जो पार्टी पे हावी होने की बात है वो एक मनगढ़ंत बात, इसलिए क्योंकि एक तो मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, तो हम नेशनैलिटी के साथ आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में तो हिस्सा ले नहीं सकते. दूसरा, मुझे शादी से पहले भी और शादी के बाद भी पार्टी जिस तरीके से अपने को रन करती है उसपे शदीद एतराजात थे. ये जो लोग लेके आए इमरान, तो उसके बारे में मैं बहुत अरसे से तनकीद कर रही थी कि ये किस किस्म के ये लोग लेके आए हैं, इनकी तो ना इनमें कोई वजहदारी है, ना इनकी कोई पोलिटिकल बैकग्राउंड है या अच्छा बैकग्राउंड है, ये कॉम्पिटेंट नहीं है. तो शादी से पहले तो मुझे ये कहते थे कि तुम जब मुझे ये आके बताओगी तो जाहिर है कि मेरी इन्फो में इजाफा होगा, और शादी के बाद मुझे चुप करा दें, डांट दें, तो पार्टी पे हावी होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था. क्योंकि इमरान पॉलिटिक्स के बारे में बात करना पसंद ही नहीं करते. वो मुझे बिल्कुल कुछ महीनों के बाद, तो एक दो महीनों के बाद, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल कह दिया कि अगर मुझे कुछ कहना है, तुमने किसी की कोई रिपोर्ट देनी है कि इस कॉलेज में ये हुआ या ये सियासी तकरारी हुई, तो मुझे लिख के दे दो. इसलिए क्योंकि मैं शाम का वक्त मेरा है म्यूजिक सुनने का, एंजॉय करने का, तो मुझे बड़ी अजीब ये बात लगती थी.
रेहम की ये किताब उस समय आई जब इमरान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ रहे थे. कुछ हलकों में ये भी कहा गया कि इस किताब के जरिए रेहम ने इमरान को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. लेकिन अगर उनका ये मकसद रहा भी हो तो वो सफल नहीं हुई और इमरान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली. मैंने उनसे पूछा कि आपको इस बात का अफसोस नहीं कि अगर आपने इमरान से तलाक नहीं लिया होता तो आज आप पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी होती?
मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं ऐसे शख्स से कॉम्प्रोमाइज कर सकूं. अगर मेरे साथ कोई जाती कैपेसिटी में बदतमीजी करता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन जो मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है, जो मेरे लोगों के साथ खेल रहा है, यानी पश्तूनों के हकूक पामाल किए जा रहे हैं अपने मकासद के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल के साथ इन्होंने खेल खेला है पिछले 5 सालों में, वो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाती और ना मैं कर सकी. तो वो इख्तलाफात जो थे वो कभी भी रिजॉल्व ना होते. मैं समझती हूँ कि इमरान ने जिस वजह से भी मेरा इंतखाब किया और मुझसे शादी करने की ख्वाहिश थी उनकी, वो गलत थी, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत मिसमैच्ड एक इंसान हूँ. मैं एक पॉलिटिशियन की बीवी, एक प्राइम मिनिस्टर की बीवी बनने के लिए मेरा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है. मैं कोई गलत काम करे उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती. मैं भी समझती हूँ कि उनकी भी गलती थी, और जब रिश्ता टूटा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती थी कि मैंने ऐसे शख्स से शादी की.
मोहब्बत न वफा और न यारान है, पहले वक्तों के ये शायद कोई अफसाने है.
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली.
उधर दुबई में एशिया कप क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश आमने सामने हैं. सुमिरनप्रीत कौर ताज़ा जानकारी के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं.
जी, और ताज़ा जानकारी ये है कि जो दुबई में ये मुकाबला चल रहा है उसमें भारत ने टॉस जीता और निर्णय लिया वो करेंगे फील्डिंग. और जहां तक फील्डिंग की बात है तो भारत की तरफ से शानदार प्रदर्शन रहा है, क्योंकि बहुत ही स्लो रन रेट रहा है बांग्लादेश का. अभी तक सिर्फ 132 रन बनाए हैं 7 विकेट खोकर, जबकि 40 से ज़्यादा ओवर हो चुके हैं. और जहां तक बॉलिंग की बात है तो जो रविंद्र जडेजा हैं भारत के, उन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं बांग्लादेश के, और जो भुवनेश्वर कुमार हैं उन्होंने 2 विकेट लिए हैं. और जिस तरह से इनकी पारी को सीमित कर दिया है, लिमिट कर दिया है बांग्लादेश को, वो काबिले तारीफ है. भारत का ये तीसरा मुकाबला है इस श्रृंखला में और अब तक भारत ने शानदार प्रदर्शन दिखाया. हालांकि मैच जीते हैं, चाहे हांगकांग की बात हो या पाकिस्तान से जो मुकाबला उन्होंने 8 विकेट से जीता. अब ये तीसरा मुकाबला है और इसके बाद भारत का मुकाबला फिर से होगा पाकिस्तान से.
बहुत शुक्रिया सुमरनप्रीत कौर से. खेल समाचारों के बाद चलते चलते खास खास खबरें मोहम्मद शाहिद से एक बार फिर सुनते हैं.
बीबीसी समाचार. जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवानों के अपहरण और उनकी हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ विदेश मंत्री स्तर की बातचीत को रद्द कर दिया है. ब्रेक्जिट प्लान को खारिज करने पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने यूरोपीय संघ को लेकर नाराजगी जाहिर की है. टेरेसा मे ने कहा कि यूरोपीय संघ को ब्रेक्जिट की बातचीत में ब्रिटेन का सम्मान करना चाहिए. बीबीसी समाचार.
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। अगला प्रसारण नमस्कार भारत समय जानते हैं आप भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।